मेरे प्रिय मित्रों नमस्कार। आज 17 सितंबर 2019 है और आज के इस afis.com के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं और आप सबके साथ ही विशेष रूप से स्वागत करता हूं अपने उन एक नौजवान साथी का जिन्होंने 10 अक्टूबर से 24 अक्टूबर के बीच होने वाली 15 दिन की क्लासेस के लिए दाखिला लिया है और इन दोस्त का नाम है मोहम्मद आतिफ। आप अमरोहा उत्तर प्रदेश से हैं। फ्रेंड्स, आज के मुख्य विषय के अंतर्गत मैं खाड़ी संकट और भारत इस विषय पर बात करना चाहूंगा। इससे पहले मैं आपसे दो बातें कहने जा रहा हूं। पहली बात तो यह कि मेरे पास लगातार मेल आते रहते हैं और अभी भी आ रहे हैं और वे मेल इस बात को लेकर होते हैं कि सर, मैं अभी ग्रेजुएशन कर रहा हूं, मुझे अपने सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की तैयारी कैसे करनी चाहिए और भी कि शुरुआत हम कैसे करें। मुझे लगता है कि जितने भी मेल मेरे पास आते हैं उनमें से एक तिहाई मेल लगभग इसी तरह के प्रश्नों से जुड़े हुए होते हैं, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से। तो दोस्तों, फिलहाल इसके बारे में मैं केवल 2-3 बातें आपसे कहने जा रहा हूं। पहला तो यह कि सच में अगर आप गंभीरतापूर्वक तैयारी करना चाहते हैं तो दोस्तों, यह जो डेली ऑडियो लेक्चर होता है इसे आपको नियमित रूप से सुनना ही चाहिए। यह आपकी बहुत मदद कर सकता है। एकेडमी ने, यानी कि हम लोगों ने जो दूसरी व्यवस्था कर रखी है वो है 15 दिन की क्लासेस के लिए, जिसे अब आप ऑफलाइन क्लास कह सकते हैं, जिसके बारे में लगभग रोज चर्चा हो ही जाती है क्योंकि जब मैं ये नाम लेता हूं स्टूडेंट्स के कि इन्होंने दाखिला लिया है, रजिस्ट्रेशन कराया है, तो बेसिकली वो 15 डेज की क्लासेस के बारे में ही होता है। और सच पूछे तो इस 15 डेज की क्लासेस में जो लगभग 90 घंटे से अधिक की ही होती हैं, केवल ये बताया जाता है कि आप सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के लिए तैयारी कैसे करेंगे और जब तैयारी की बात होती है तो बट नेचुरल कि आप पढ़ेंगे कैसे, किस तरीके से आपको अपनी पढ़ाई करनी चाहिए। और दोस्तों, जो तीसरी जो व्यवस्था हम लोगों ने की है, जो मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी व्यवस्था है, अपने आप में बहुत यूनिक व्यवस्था है, इसे आप तभी समझ सकेंगे जब आपको थोड़ा सा अनुभव मिलेगा, और वह है ऑनलाइन क्लासेस की शुरुआत। एकेडमी ने अभी कुछ ही दिनों पहले ऑनलाइन क्लासेस भी शुरू कर दी है जिससे आप घर बैठे ही फायदा ले सकते हैं। इसके अंतर्गत आपकी कंप्लीट प्रिपरेशन कराई जाएगी। तो फिलहाल मित्रों, मैं आप लोगों को बस इतनी ही सूचना देना चाहूंगा, बाद में कभी समय मिला तो फिर मैं आपको ऑनलाइन क्लासेस के बारे में डिटेल में बताऊंगा। हाँ, एक तथ्य यहां और मैं आपके सामने रख दूं कि अगर आप ऑनलाइन क्लासेस के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो जो हमारी वेबसाइट है आप वहां चले जाइए, उसमें आप मेन्यू में जाकर के क्लिक कीजिए class.afias.com। उसमें आपको ऑनलाइन के बारे में पूरी डिटेल में जानकारी मिल जाएगी। दोस्तों, अब मैं आता हूं सब्जेक्ट पर। सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के अगर आप अनसॉल्व्ड पेपर उठा करके देखें, खासकर प्री की बात मैं कर रहा हूं, तो आप पाएंगे कि उसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिन्हें पढ़ने के बाद आपको थोड़ा सा अटपटा सा लगेगा। अटपटा सा इस मायने में कि ये कहां से पूछ लिया गया, कहां पढ़ने को मिलेगा, इस तरह की बातें दिमाग में उठती हैं। और सच बात यही होती है कि उसके बारे में हम बहुत गंभीरता से पढ़े हुए भी नहीं होते हैं, पढ़ते तो हैं लेकिन दिमाग से स्लिप कर जाता है। तो इस तरह के दो तथ्य आज मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं जिनसे हम चूक जाते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि डेली ऑडियो लेक्चर तैयार करने की दृष्टि से मेरा ये फर्ज बनता है कि उन छोटे छोटे तथ्यों की ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करूं। दोस्तों, एक शब्द है, एक तथ्य है, कह लीजिए K2-18, K2-18 यानी कि 18, ये क्या है? इसके बारे में हो सकता है कि 3-4 दिन के बीच में अगर आपने ध्यान से अखबार पढ़े हो तो आपके संपर्क में ये शब्द आया हो, आपके नजरों से ये शब्द गुजरा हो। बेसिकली यह एक ग्रह है, प्लैनेट है जिसकी अभी अभी खोज की गई है। इस ग्रह की विशेषता ये है सबसे ज्यादा, जिसकी वजह से अखबारों में काफी चर्चा में भी आया, कुछ अखबारों ने तो इस पर एडिटोरियल कमेंट भी लिखे। अगर आप कल का दैनिक हिंदुस्तान पढ़ेंगे तो बकायदे इसी पर उनका एडिटोरियल कमेंट भी है। वो इसलिए कि यहां पानी मिला है, मतलब लोगों को लग रहा है कि यहां पानी है, पक्के तौर पर पानी है। देखिए, ये कहा जाता है कि जिस भी प्लेनेट पर पानी की संभावना होगी तो मान करके चले कि वहां जीवन की भी संभावना हो सकती है। और एक दो जो इंपॉर्टेंट बातें हैं कि अगर चलिए वहां जीवन की संभावना हो सकती है तो अब हम पृथ्वी को तो बर्बाद कर ही रहे हैं, तो हो सकता है कि कभी हम वहां जाकर के बसे, जैसा कि स्टीफन हॉकिंग्स ने कहा भी था कि इस पृथ्वी का कभी इतना बुरा हाल हो जाएगा कि अब दुनिया को दूसरे ग्रह में बसाने के बारे में सोचना चाहिए। तो अगर हम सोचें कि ठीक है हम K2-18 में जाकर के कभी रहेंगे, तो उसकी दूरी मालूम है कितनी है? उसकी दूरी है 124 प्रकाश वर्ष, 124 लाइट ईयर्स। यानी कि हम अगर प्रकाश की गति से ट्रेवल करें तो वहां तक पहुंचने में 124 साल लग जाएंगे। तो आप सोच करके देखिए कि वो ग्रह कितनी दूर स्थित है, तो क्या हमारे लिए संभव है? तो एक बहुत ही सामान्य सी जानकारी मैंने आपको दी है। इसी तरह से दोस्तों, एक और शब्द अगर आपके ध्यान में आया हो, हूती विद्रोही या रिबेलियन है, हुती नाम है इनका। ये कहां है, कौन है, कैसे है, कभी कभी इस तरह के प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो ये जो हुती विद्रोही हैं, बेसिकली आप यूं कह लीजिए कि ये ईरान समर्थित विद्रोही हैं। ईरान समर्थित यानी कि ईरान इनका समर्थन करता है और ये यमन में रहते हैं, ये रिबेलियंस हैं। और अभी आपने जो खबर पढ़ी होगी और जिसको लेकर के मैं आज मुख्य विषय के तहत आपसे चर्चा भी करने जा रहा हूं कि सऊदी अरब में जो हमला हुआ है टैंकर्स पर, तेल संयंत्र पर कह लीजिए, पेट्रोलियम कंपनी पर, पेट्रोलियम उत्पादक कंपनी पर, इसने जिम्मेदारी ली है कि हमने हमला किया है। तो ये हुती क्या हो गए? एक रिबेलियन हो गए, एक विद्रोही संगठन हो गया। तो ये आपके दिमाग में होना चाहिए। आइए अब मैं मुख्य विषय पर आपसे कुछ बातें करूं। खाड़ी संकट और भारत, अभी जो एक बहुत बड़ी घटना दुनिया में घटित हुई है जिसको लेकर के अब अखबार भी काफी लिख रहे हैं और दुनिया चिंतित भी है। अभी तक तो हम अमेरिका और चीन के बीच जो व्यापार युद्ध हो रहा था उसको लेकर के चिंतित है, हम का मतलब केवल भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया। अब यह दूसरा संकट आ गया है और दूसरा संकट यह है दोस्तों कि सऊदी अरब में एक कंपनी है जो तेल का उत्पादन करती है और बहुत बड़ी कंपनी है, उसका नाम है अरामको। ये भी नाम आपके दिमाग में होना चाहिए, अरामको। इस कंपनी पर ड्रोन से हमला किया गया और नतीजा ये हुआ कि इस कंपनी की जो तेल उत्पादन की क्षमता थी लगभग 50% खत्म हो गई। और जैसे ही इसने 50% अपना तेल उत्पादन कम किया, जो करना ही पड़ा, आप ये नहीं कि जानबूझ कर किया, तो पूरी दुनिया में जो तेल का उत्पादन होता था उसमें 5% की कमी आ गई। 5% की कमी, ये कम नहीं होता है 5% की कमी। और उसका नतीजा ये हुआ कि आज के अखबार उन खबरों से भरे पड़े हैं कि पूरी दुनिया में हाहाकार मच गया, और खासकर इस बात को लेकर के क्योंकि तेल की कीमतों में तेजी से उछाल आ गया, 20% तक उछाल आया, बाद में वो 10% पर एस्टेब्लिश हुआ, 10% मूल्यों में उछाल आना पेट्रोलियम पदार्थों में अपने में बहुत बड़ी बात होती है। अब देखिए कि ये तो एक घटना हुई। हमारे लिए सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की दृष्टि से जब विचार करते हैं तो जरूरी है कि भारत पर इसका क्या प्रभाव होगा, भारत इसको कैसे देखे, कैसे समझे, कैसे इसकी व्यवस्था करे, इस पर हमारा विशेष ध्यान होना चाहिए। और इस बात को लेकर के बकायदे आज अखबारों ने एडिटोरियल भी लिखे हैं। मैं आपको टाइम्स ऑफ इंडिया का एडिटोरियल प्रोवाइड कर रहा हूं और इसी तरह से बिजनेस स्टैंडर्ड का भी एडिटोरियल प्रोवाइड कर रहा हूं। अब भारत की देखिए क्या स्थिति है। भारत की स्थिति यह है कि जो सऊदी अरब है वो हमारे यहां दूसरा जो है सबसे बड़ा तेल निर्यातक हमारे लिए देश है, यानी कि हम अपने तेल का जो आयात करते हैं वो ईरान से तीसरा है और सऊदी अरब से दूसरा है। हम अपनी जरूरत का लगभग 20% ऑयल सिर्फ सऊदी अरब से मंगाते हैं, ईरान से लगभग 10-12% मंगाते हैं। अब आप देखिए कि इन दोनों का नाम मैं इसलिए ले रहा हूं कि आपको मालूम है कि जब अमेरिका ने ईरान पर प्रतिबंध लगाया है तो कुछ लगभग 2 महीनों से हम ईरान से तेल नहीं मंगा पा रहे हैं, या हो सकता है कि 1 महीने का वक्त हो, एग्जैक्ट थोड़ा मुझे ध्यान नहीं आ रहा, लेकिन ईरान से अब हम तेल नहीं मंगा पा रहे हैं अमेरिकी प्रतिबंध के कारण। अब सऊदी अरब जो हमारे लिए 20% सप्लायर था उसका प्रोडक्शन कम हो गया है, हो सकता है कि और कम हो जाए, क्या होगा हम नहीं जानते। तो यह भारत के लिए एक बहुत बड़ा संकट है। और आप यह भी जानते हैं कि भारत अपने ऑयल पेट्रोलियम पदार्थों की जरूरत का लगभग 80% आयात करता है, 80% आयात करता है, कितनी बड़ी मात्रा हम आयात करते हैं, और यदि इंटरनेशनल मार्केट में तेल की कीमत में $1 प्रति बैरल की वृद्धि होती है, केवल एक डॉलर बढ़ रहा है, तो हमारा जो खर्चा है वो 10,500 करोड़ रुपए बढ़ जाता है, यानी कि 10,500 करोड़ रुपए जो हमारा इंपोर्ट का बिल होगा वो बढ़ जाएगा केवल $1 कीमत बढ़ने से प्रति बैरल। तो ऐसी स्थिति में आप सोच करके देखिए कि अगर तेल की कीमतें लगातार इस तरह से बढ़ती रहीं तो भारत के लिए कितना संकट खड़ा हो जाएगा। यहां एक बात और भी है दोस्तों, वो ये है कि अभी पिछले कुछ समय से आपने महसूस किया होगा कि भारत में जो इन्फ्लेशन का रेट है, यानी कि जो मुद्रा स्फीति जिसको बोलचाल की भाषा में हम कहते हैं महंगाई, वो काफी नियंत्रण में है, है ना, 3-5% के आसपास है, जिसे हम बहुत ज्यादा नहीं कह सकते, है ना। वैसे भी डेवलपिंग कंट्री में थोड़ा सा इन्फ्लेशन होते भी रहना चाहिए। ये अर्थशास्त्रियों का मानना है कि जो हम इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर पा रहे हैं उसका बहुत बड़ा कारण है इंटरनेशनल मार्केट में जो क्रूड ऑयल है, जो कच्चा तेल है, उसके दाम लगभग स्थिर हैं, या यूं कह लीजिए कि कम है। और क्रूड ऑयल जो है वो प्रोडक्शन का सबसे बड़ा सोर्स है, आप कह लीजिए एनर्जी का सबसे बड़ा सोर्स है, ट्रांसपोर्ट का सबसे बड़ा सोर्स है। तो चूंकि पेट्रोलियम के दाम स्थिर हैं इसलिए भारत इन्फ्लेशन को कंट्रोल किए हुए है, और अगर हम इन्फ्लेशन को कंट्रोल किए हुए हैं तो ठीक उसका प्रभाव हमारे राजकोषीय घाटा पर होगा, कि राजकोषीय घाटा भी काफी कुछ हमारे नियंत्रण में है। अब यदि वहां तेल के दाम बढ़ जाते हैं तो फिर आप कल्पना कीजिए कि भारत के लिए फिर एक बहुत बड़ा संकट उठ खड़ा होगा। ये इसका दोस्तों एक पक्ष था। दूसरा पक्ष, हम अपने सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की दृष्टि से ही बात कर रहे हैं। देखिए, द्रोण से हमला हुआ, द्रोण के हमले की एक विचित्र स्थिति यह होती है कि मिसाइल को तो हमारे रडार पकड़ सकते हैं लेकिन द्रोण को नहीं पकड़ सकते, अभी ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं आई है। अगर हम तेल के संबंध में, तेल की समस्या के बारे में भारत की बात करें तो भारत आयात तो कर ही रहा है, लेकिन उसका एक दूसरा उपाय यह हो सकता है कि भारत अपने यहाँ तेल के उत्पादन को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाए। चलिए, वो हमारी अपनी सीमाएं हैं, उस पर हम अभी बात नहीं करते, लेकिन हमारे जो तेल उत्पादक क्षेत्र हैं आप देखिए कि वो सीमा क्षेत्रों में है, वो समुद्र के किनारे ज़्यादातर हैं, और इस तरह के ड्रोन के हमले हो रहे हैं और फिर समुद्री रास्तों से भी आतंकवादी घटनाएँ घटित हो सकती हैं। इसका मतलब है कि हमारे यहाँ जो इस तरह के संस्थान है, पेट्रोलियम उत्पादन या परमाणु ऊर्जा के उत्पादन से संबंधित संस्थान, इनकी सुरक्षा के बारे में भी भारत को बहुत गंभीरता से विचार करना चाहिए। वैसे ऑलरेडी भारत ने इनकी सुरक्षा की व्यवस्था कर रखी है, और जो हमारे इस तरह के संस्थान हैं वहाँ बाकायदे सुरक्षा के लिए CRPF के जवान तैनात रहते हैं। अगर आपने इंडियन सिक्योरिटी पर तैयारी की हो तो आपने ये बात पढ़ी होगी, लेकिन अब ये बात विशेष रूप से कही जा रही है कि द्रोण से हमले होने के बाद कि भारत को अपनी द्रोण नीति के बारे में भी पुनर्विचार करना चाहिए। भारत ने दिसंबर 2018 में अपनी द्रोण नीति जारी की थी, उसमें भी अब तब्दीली की थोड़ी सी जरूरत है, यानी कि घटना एक यह घटी है और इसका संबंध कहीं ना कहीं हमारी अपनी सुरक्षा व्यवस्था से भी है। इसी बात की ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाह रहा हूं। दोस्तों, एक बात और, जब आप पढ़ते हैं कि खाड़ी देश, खाड़ी युद्ध, खाड़ी संकट, और इसके बाद थोड़ी देर में आपको पढ़ने को मिल जाता है पश्चिम एशिया, तो हो सकता है कि आपके दिमाग में कन्फ्यूजन हो कि नहीं, जो गल्फ कंट्रीज हैं वो अलग है और जो वेस्ट एशिया है वो अलग है, अलग अलग। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो वेस्ट एशिया है वो अपने आप में थोड़ा सा बड़ा क्षेत्र है, और उसमें खाड़ी देश हैं जो गल्फ कंट्रीज हैं। तो वेस्ट एशिया बेसिकली एक बहुत बड़ा पार्ट है, मतलब एशिया का पश्चिम भाग। आपकी सुविधा के लिए जो वेस्ट एशिया में जो इंपॉर्टेंट कंट्रीज आती हैं उनके मैं यहाँ नाम ले रहा हूँ, बस एक बार आप सुन लीजिए, आपके दिमाग में दर्ज हो जाएंगे कि दरअसल पश्चिमी एशिया के अंतर्गत कौन कौन से देश आते हैं। इस तरह की जब आपको जानकारी होती है तो जब आप एडिटोरियल पढ़ते हैं या आर्टिकल्स पढ़ते हैं तो आपकी समझ बहुत अधिक विकसित हो जाती है। तो मैं वेस्ट एशिया के बारे में बता रहा हूँ कौन कौन से देश आते हैं। देखिए, अफगानिस्तान, ईरान, इराक, इनके नाम आप सुनते ही हैं, वेस्ट एशिया में है। अभी जो घटना घट रही है सऊदी अरब, जिन्हें गल्फ कंट्रीज हमने कहा, सऊदी अरब है, कतर है, आपके कुवैत है, यूनाइटेड स्टेट अमीरात है, ये सबके ओमान है, ये सबके सब गल्फ कंट्रीज में आते हैं, ये भी वेस्ट एशिया में ही है। आर्मेनिया, अजरबैजान, बहरेन, साइप्रस, जॉर्जिया, इज़राइल, जॉर्डन, टर्की, सीरिया, यमन, ये सब के सब पश्चिम एशियाई देश हैं, ये आपको मालूम होने चाहिए। तो दोस्तों, मुख्य विषय के बारे में बस इतना ही। न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स मैं आप सबको प्रोवाइड कर रहा हूं। मैं स्पेशली आपसे एक बात कहना चाहूंगा कि आज एक क्लिपिंग है, उनकी उम्मीदें बदल रही हैं राजनीति। ये दैनिक हिंदुस्तान का आर्टिकल है, आप इसे डेफिनेटली पढ़िएगा मित्रों, ये बहुत अच्छा आर्टिकल है। और खासकर इसमें उन्होंने जो दलित वर्ग है उनकी मानसिकता में किस तरह का परिवर्तन आ रहा है उसको लेकर के अपनी बात कही है, और मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा आर्टिकल है, इसे आपको पढ़ना ही चाहिए। दूसरी न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स भी मैं आप सबको प्रोवाइड कर रहा हूं, आप सब अपनी जरूरतों के हिसाब से देख लेंगे। ईमेल लिखने वाले सभी दोस्तों को धन्यवाद देता हूं, और उन्हीं में से दो मित्रों के नाम हैं रामेश्वरी और प्रज्ञा जैन, शिवपुरी मध्य प्रदेश से। आप सबका बहुत बहुत आभार। और दोस्तों, इसी के साथ ही आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को यहीं समाप्त करना चाहूँगा। नमस्कार।